पृष्ठ संख्या 10 अध्याय 1 आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को समुद्र के तट पर दंडी में गुलामी की बंडी पर पहला हथौड़ा चलाया और उसकी झंकार सारे देश में गूंज उठी। पहले किसी की समझ में न आया कि महात्मा जी क्या करने जा रहे हैं। मजाक भी उड़ाया गया। एक गवर्नर ने अपने खुशामदी टट्टुओं को जमा करके अपने दल के फफोले फोड़ते हुए इस संग्राम को दुखमय प्रहसन बतलाया। गवर्नर साहब को क्या मालूम था कि यह दुखमय प्रहसन 2 सप्ताह ही में आजादी का एक प्रचंड प्रवाह सिद्ध हो जाएगा, जिसे नौकरशाही की सारी संगठित शक्ति भी न रोक सकेगी। वह सब किया गया जो ऐसी परिस्थितियों में स्वेच्छाचारी शासन किया करता है। हमारे नेता चुन चुन कर जेल भेज दिए गए, अफसरों को नए नए अधिकार दिए गए, वायसराय ने भी अपने स्वरक्षित अस्त्र निकाल लिए। यहाँ तक कि इस लू और गर्मी में देवताओं तक को पर्वत शिखरों से 2-1 बार उतरकर नीचे आना पड़ा, जो भारत के इतिहास में अनहोनी की बात थी। लेकिन स्वराज्य सेना के कदम आगे ही बढ़े जाते हैं। जैसे बच्चे हार जाते हैं तो दांत काटने लगते हैं, वही हाल नौकरशाही का हो रहा है। कहीं निहत्थी जनता पर डंडों और गोलियों की बौछार हो रही है, कहीं जनता में फूट डालने की कोशिश हो रही है। ब्रैकेट में जिस गवर्नर का हमने ऊपर जिक्र किया है, उसी ने एक दूसरे मजमे में जमींदारों को इन विरोधियों की खबर लेने की सलाह भी दी थी। ब्रैकेट क्लोज। फिल्मों पर रोक लगाई जा रही थी, तार की खबरों का सेंसर किया जा रहा था। हमने इन सब बातों की कल्पना पहले ही कर ली थी। कोई बात हमारी आशाओं के खिलाफ नहीं हुई। अंग्रेजों की दानवता का नाच हम देख चुके हैं। कायरता, कमीनापन, निर्दयता आदि गुणों में इस जाति से बाजी ले जाना मुश्किल है। फिर भी हमारा जो कुछ अनुमान था, उससे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। न कोई कानून है, न कायदा, न नीति, न धर्म। बस जिधर देखिए लबड़ धो धो एक घबराए हुए आदमी की बौखलाहट। एक ही अपराध के लिए 2 महीने से 2 साल तक की सजा, और वह भी कठोर। मगर हम इन बातों की शिकायत नहीं करते। इन्हीं अन्यायों से तो हमारी विजय है। सन्निपात मौत के चिन्ह हैं। हम तो महात्मा जी की सूझबूझ के कायल हैं। जो बात की, खुदा की कसम लाजवाब की। न जाने कहां से नमक कर खोज निकाला कि उसने देखते देखते देश में आग लगा दी। कोई दूसरा ऐसा कर नहीं जो गरीब से गरीब आदमी से वसूल किया जाता हो, और न कोई दूसरा कर ऐसा है जिसका असेंबली ने इतना विरोध किया हो। पृष्ठ संख्या 11। अगर हमारी स्मृति भूल नहीं करती तो शायद 1924 में असेंबली ने इस कर को अस्वीकार कर दिया था और वायसराय को इसे अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करना पड़ा। कर का व्यापक नियम है कि वह विलास की वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए। जो चीज जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा और पानी, उस पर कर लगाना नीति विरुद्ध है। अंग्रेजी राज्य के पहले भारत में यह कर कभी नहीं लगाया गया था। आज भी दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहां नमक पर कर लगाया जाता है। मुस्लिम स्मृतिकारों ने तो नमक, हवा और पानी पर कर लगाना निषिद्ध बताया है, पर हम 150 वर्षों से यह कर देते आए हैं। और मजा यह है कि जिस वस्तु पर 2 आना मन लागत आवे, उस पर 125 रुपए मन कर लिया जाता है, जो लागत का 10 गुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कर को सामूहिक रूप से निहायत आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसा कोई भूभाग नहीं जहां लोनी मिट्टी न हो, और शहर या गांव, दोनों ही जगहों के आदमी बड़ी संख्या में जमा होकर इसे तोड़ सकते हैं और सरकारी नमक को बाजार से निकाल बाहर कर सकते हैं। नौकरशाही ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जितना पशुबल संभव था उससे काम लिया, पर कर टूट गया। जिस नियम के भंग करने वालों को सरकार दंड न दे सके, जिसकी रक्षा करने के लिए डंडे के सिवा कोई और दूसरा साधन न हो, वह कानूनी देवताओं में भले स्वरक्षित रहे, पर व्यावहारिक रूप से वह टूट गया और सरकारी के लिए अब इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि इस कर को मनसूख कर दे और अपनी हार स्वीकार कर ले। गवर्नमेंट सोचती होगी कि जब नमक के बड़े बड़े कारखाने खुल जाएंगे तो हम उसे जब्त कर लेंगे और इस तरह आजाद नमक को सिर न उठाने देंगे। लेकिन हमारे पास इस चाल का यही जवाब है कि हम अपने अपने घरों में नमक बनाना उतना ही जरूरी समझ लें जितना भोजन बनाना। फिर हम देखेंगे कि सरकार अपना नमक कैसे हमारे गले मढ़ती है। लक्षणों से मालूम होता है कि नमक आंदोलन असर कर रहा है और नमक के व्यापारियों ने सरकारी नमक मांगने में आनाकानी शुरू कर दी है। सरकार के इस प्रचंड दमन के फलस्वरूप बाज बड़े शहरों में जनता भी शांति आदर्श को न निभा सकी और कराची, बम्बई, पूना और कलकत्ता आदि शहरों में कुछ गोलमाल हुआ, जिससे पुलिस को अपने दिल के अरमान निकालने का अच्छा मौका मिल गया। पर इन दुर्घटनाओं का दोष अगर किसी के ऊपर है तो वह सरकार है। अगर वह सत्याग्रहियों को कायदे के अनुसार पकड़ लेती तो कहीं कुछ न होता। जुलूसों को रोकना, सत्याग्रहियों को डंडे से पीटना, जनता से अगर न देखा जाए तो हम उन्हें क्षम्य समझते हैं। अगर नौकरशाही को यही विश्वास है कि निरस्त्र जनता पर लाठियों का प्रहार करके वह उन पर धाक जमा सकती है तो यह उनकी भूल है। इन चारों स्थानों में ही पुलिस ने जिस गुंडेपन का परिचय दिया है वह असभ्य से असभ्य जातियों को कलंकित करने के लिए काफी है। पृष्ठ संख्या 12। क्या मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है? अभी तक तो सरकार के लिए यह कहने की गुंजाइश बाकी थी कि इस आंदोलन में केवल कांग्रेस के गर्म दल वाले ही शामिल हैं। लेकिन दिन दिन उस पर यह हकीकत खुलती जाती है कि आजादी की लड़ाई में देश के सभी दल मिले हुए हैं, और अगर उसके मिलने में कुछ कसर थी तो वह सरकार की हिमाकत और पागलपन की बदौलत पूरी हुई जाती है। पुरानी कहावत है, बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त ऐसा जान पड़ता है कि अंग्रेजों के बुरे दिन आ गए हैं, नहीं तो अंग्रेजी कपड़े को अन्य देशों में कपड़ों से कम महसूल पर लाने का प्रस्ताव पास करने की जरूरत ही क्या। गैर सरकारी बहुमत इस प्रस्ताव के विरुद्ध था, पर सरकार ने अपनी जिद से उसे पास करके ही छोड़ा। नतीजा क्या हुआ? आज पंडित मदन मोहन मालवीय, मिस्टर कैलकर, मिस्टर अर्ने, मिस्टर हसन इमाम हमारे साथ हैं और व्यापारी दल तो बिल्कुल अलग ही हो गया है। अब सरकार को मॉडरेटों में नाम लेने के लिए दो चार लिबरल और रह गए हैं। हमें आशा है कि उसकी कोई नई हिमाकत यह कमाल भी कर दिखाएगी। हालांकि लिबरलों के विषय में हमें संदेह है कि कोई अनीति, कोई अत्याचार इन्हें जगा सकता है। इनकी आशा अपार है और धैर्य अनंत। वायसराय सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और भी जिसकी वाणी की कुछ इज्जत है, कह चुके हैं कि डोमिनियन स्टेटस अभी बहुत दूर है। लेकिन हमारे लिबरल भाई है कि उस बहुत दूर को बहुत नजदीक समझने के लिए बेकरार हैं। लिबरलों की राजनीति डिनर पार्टी और ड्राइंग रूम तक महदूद है। इसीलिए सरकार के अंतिम आधार अगर लिबरल हो तो यह सरकार और लिबरल दोनों ही के लिए आपस में हाथ मिलाने और बधाइयां देने का अवसर हो सकता है। अगर इस तिनके का सहारा सरकार लेना चाहती है तो शौक से ले, मगर सरकार ने शुरू से जिस हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की उपासना की है उसे संकट के अवसर पर कैसे भूल जाती। कहा जा रहा है और लिखा जा रहा है कि मुसलमान इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ नहीं है। मुसलमान नेता जत्थेदार बन बन कर कैद हो, मार खाए, कितनी ही कांग्रेस कमेटियों के प्रधान और मंत्री हो, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। जमेयतुल उलमा जैसा सर्वमान्य मंडल पुकार पुकार कर कह रहा है कि नमक का महसूल इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, पर कहने वाले कहे जाते हैं मुसलमान इस आंदोलन के साथ नहीं है। मालूम नहीं वह यह कह कर किसे धोखा देना चाहते हैं। हाँ, हम यह मानने को तैयार हैं कि हमारे खान बहादुर साहबान, जिनकी संख्या ईश्वर की दया से अंग्रेजों की असीम कृपा होने पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, मगर खान साहब नहीं है तो बेशक हमारे साथ नहीं तो राय साहब भी तो नहीं है। यो कहिए कि यह उन लोगों का आंदोलन है जो हमारे सारे संकटों का मोचन एकमात्र स्वराज्य ही को समझते हैं, जो गरीब हैं, भूखे हैं, दलित हैं, या जो गैरत से भरा हुआ, देशाभिमान से चमकता हुआ हृदय रखते हैं, और यह देखकर जिनका खून खौलने लगता है कि कोई दूसरा हमारे ऊपर शासन करे। पृष्ठ संख्या 13। इसमें न हिंदू की कैद है न मुसलमान की, दोनों ही समान रूप से यह संकट झेल रहे हैं, तो दोनों समान रूप से शरीक हैं। मुसलमान आजादी के प्रेम में हिंदुओं से पीछे रह जाएं, यह असंभव है। मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की, यह सब मुसलमानों के ही देश हैं। देखिए अपनी आजादी के लिए उन्होंने क्या क्या किया और कर रहे हैं। वह कौम कभी आजादी के खिलाफ नहीं जा सकती। दो चार मौलवी, दो चार सर, 10-5 ऑनरेबल, यह हाक लगाए जाएंगे, शौक से लगावे, हिंदू हो या मुसलमान। जो अंग्रेजी राज्य में धन और अधिकार के सुख लूट रहे हैं, वे अंग्रेजी सरकार के परम भक्त हैं और रहेंगे और रहना चाहिए। वे किसी के तो नमक हलाल बने रहे, जिसे अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं, जो अंग्रेजों की शरण आकर कोई ओहदा पा जाना ही अपनी जिंदगी का निर्वाण समझता है, वह हमेशा उस पक्ष की तरफ रहेगा जहां उसे सफलता का पूरा भरोसा है। ऐसे लोग खतरे की तरफ भूलकर भी न आवेंगे। अमेरिका के गुलाम भी तो गुलामों की आजादी की लड़ाई में मालिकों के पक्ष में लड़े थे। ऐसे गुलाम प्रकृति के लोग हमेशा रहेंगे और उनके रहने से किसी आंदोलन का नाश नहीं होता। मगर हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी इस मुसाहलत की हालत में हवा का झोंका न लगने पाए, नहीं तो वह घातक हो जाएगा। कहीं अछूतों को हमसे भड़काने की कोशिश की जाएगी और कहीं की जा रही है, कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़ा देने के मंसूबे सोचे जाएंगे। हमें इन चालों को तीव्र दृष्टि से देखते रहना चाहिए। क्या जमाने की खूबी है कि जिन लोगों ने अछूतों को उससे कहीं ज्यादा दलित किया है, जितना कट्टर से कट्टर हिंदू समाज कर सकता था, वह आज अछूतों के शुभ चिंतक बने हुए हैं। बेगार की सख्तियों का दोष किस पर है, हिंदू समाज पर या सरकार पर? उन्हें अपढ़ रखने का दोष किस पर है, हिंदू समाज पर या सरकार पर? उन्हें ताड़ी, शराब, गांजा, चरस पिला पिला कर कौन रुपए कमाता है, सरकार या हिंदू समाज? प्रारंभिक शिक्षा का बिल सरकार ने पेश किया था या स्वर्गीय मिस्टर गोखले ने? उसे किसने धनाभाव का बहाना करके नामंजूर कर दिया, हिंदू समाज ने या सरकार ने? हमें पूरा विश्वास है कि जिस सरकार की कितनी ही अछूत जातों को जरायम पेशा बना दिया, उसकी शुभ चिंतना पर हमारे दलित समाज के नेता लोग भरोसा न करेंगे। हिंदू समाज अपने दलित भाइयों के प्रति अपना कर्तव्य समझने लगा है और वह दिन दूर नहीं है कि जब आर्य और अनार्य, ऊंच और नीच की कैद नाम को भी बाकी न रहेगी। संभव है देहातों के कट्टर हिंदू कहीं कहीं अब भी उनके साथ वही पुराना बर्ताव करते हों, लेकिन विचारशील हिंदू समाज अब उस अन्याय को कायम न रहने देगा। आजादी की लड़ाई में कौन लोग आगे हैं? इस लड़ाई ने हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की कलई खोल दी। हमने आशा की थी कि जैसे अन्य देशों में ऐसी लड़ाइयों में छात्रवर्ग प्रमुख भाग लिया करते हैं, वैसे यहाँ भी होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पृष्ठ संख्या 14। हमारी शिक्षित समुदाय, चाहे वह सरकारी नौकर हो या वकील या प्रोफेसर या छात्र, सभी अंग्रेजी सरकार को अपना इष्ट समझते हैं और उसकी हड्डियों पर दौड़ने को तैयार हैं। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि 99% ग्रेजुएटों के लिए सभी द्वार बंद हैं, पर निराशा में भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद हमारी ही तकदीर जाग जाए। देख रहे हैं कि कांग्रेस के आंदोलन से ही अब थोड़े से ऊंचे ओहदे हिंदुस्तानियों को मिलने लगे हैं, फिर भी राजनीति को हवा समझ बैठे हुए हैं। या तो उनमें साहस नहीं, या शक्ति नहीं, या आत्म गौरव नहीं, उत्साह नहीं। जिस देश के शिक्षित युवक इतने मंदोत्साह हो, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। हमारी वकील समुदाय तो इस संग्राम से ऐसा भाग रहा है जैसे आदमी की सूरत देखते ही गीदड़ भागे। हमारे बड़े से बड़े नेता, जिनकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक भी यह लोग नहीं, धड़ाधड़ जेलों में बंद किए जा रहे हैं। पर यह है कि अपने बिलों में मुंह छिपाए पड़े हैं, यहाँ तक कि स्वदेशी वस्तु व्यवहार की प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते हुए भी उनके हाथ कांपने लगते हैं और कलम हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और आजादी का नमक देखकर तो उन्हें जूड़ी सी चढ़ आती है। हमें यह देखने का अरमान ही रह गया कि कोई वकील किसी जत्थे का नायक होता, नहीं वह तमाशा देखना भी खतरनाक समझते हैं। बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कचहरी गए और घर आए, उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, इस बेगैरती का कोई भी ठिकाना नहीं। अभी किसी सरकारी पार्टी में शरीक होने वाला नेवता मिल जाए तो मारे खुशी के पागल हो जाएं। नेवते के कार्ड के लिए बड़ी बड़ी चालें चली जाती हैं, नाक रगड़ी जाती हैं और वह कार्ड तो साक्षात कल्प वृक्ष ही है। गोरी सूरत देखी और माथा जमीन पर टेक दिया, ऐसे लोगों के दिन अब गिने हुए हैं। स्वाधीन भारत में ऐसे देश द्रोहियों के लिए कोई स्थान न होगा। वह जनता जिसे यूनिवर्सिटियों की हवा नहीं लगी है और आंदोलनों की तरह इस संग्राम में भी आगे आगे हैं, हमारे छोटे छोटे दुकानदार मजदूर पेशेवर ही सैनिकों की अगली शफों में हैं और भविष्य उन्हीं के हाथ में है। लक्षण कह रहे हैं कि सूट बूट वाले अंग्रेजों के गुलामों की वही हालत होने वाली है जो रूस में हुई है। यह लोग खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता और सब मुआफ कर देती है पर देश द्रोह को वह कभी भी मुआफ नहीं करती। राष्ट्रीय संस्थानों को देखिए, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, अभय आश्रम, गुरुकुल कांगड़ी, प्रेम विद्यालय वृंदावन आदि ने अपने अपने सिपाहियों के जत्थे भेजे और भेज रहे हैं। उनके छात्र जान हथेली पर रखे मैदान में निकल पड़े हैं, पर यूनिवर्सिटियों ने भी कोई जत्था भेजा, हमें तो खबर नहीं। यूनिवर्सिटियों में भी कोई प्रोफेसर आगे बढ़ा, कहाँ की बात, अपने लोग यह रोग नहीं पालते। आनंद से भोजन करें, रूसी उपन्यास पढ़ें, ताश खेलें, ग्रामोफोन या रेडियो का आनंद उठाएं या इस झंझट में पड़े। जिंदगी सुख भोगने के लिए है, झिंकने के लिए नहीं। काश यह यूनिवर्सिटियां न खुली होती, काश आज उनकी ईंट से ईंट बज जाती तो हमारे देश में द्रोहियों की इतनी संख्या न होती। यह विद्यालय नहीं, गुलाम पैदा करने के कारखाने हैं। स्वाधीन भारत ऐसे विद्यालयों को जड़ खोद कर फेंक देगा। पृष्ठ संख्या 15, देहातों में प्रोपेगंडे की जरूरत। अब तक हमारे आंदोलन शहरों तक ही महदूद रहे हैं, लेकिन नमक कर भंग देहातों में भी जा पहुंचा है। सत्याग्रही दलों का देहातों से पैदल निकलना ऐसा प्रोपेगंडा है जिसके महत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। नौकरशाही का आतंक देहातों पर शहरों से कहीं ज्यादा छाया हुआ है। वहाँ सब इंस्पेक्टर का दर्जा ईश्वर से कुछ ही कम होता है और कांस्टेबल तो खुद मुख्तार बादशाह ही है। कोई आंदोलन जिससे पुलिस के रौब दाब में फर्क पड़े उसकी हवा भी वहां नहीं पहुंचने पाती। मगर अब समय आ गया है कि हमारे स्वयं सेवक बड़ी संख्या में देहातों में पहुंचे और जलसों और जुलूसों से लोगों में राजनैतिक भाव भरे और उन्हें आने वाले महासंग्राम के लिए तैयार करें। अगर देहातों में यह आग लग गई तो फिर किसी के बुझाए न बुझेगी। हम यह मानते हैं कि देहातों में नौकरशाही दमन के कठोर से कठोर शस्त्रों का प्रहार करेगी, जमींदारों को भड़काएगी, तरह तरह की गलत फहमियां फैलाएगी, पर हमें इन कठिनाइयों का सामना करना है। हमें यह समझा देना है कि इस राज्य में सबसे ज्यादा हमारे देहात ही सताए जाते हैं और स्वराज्य में सबसे ज्यादा हित देहात वालों का ही सिद्ध होगा। हिंदू मुस्लिम बांट बखरे का प्रश्न। भारतीय एकता के विरोधी यह कहते कभी नहीं थकते कि जब तक हिंदुओं और मुसलमानों में हिस्से का समझौता न हो जाए, मुसलमान इस संग्राम में शामिल नहीं हो सकते। इस कथन में कितनी सच्चाई है इसे मुस्लिम जनता अब समझने लगी है। वह यह है कि जब तक एक तीसरी शक्ति इन दोनों जातियों के वैमनस्य से फायदा उठाने वाली रहेगी, एकता का सूर्य कभी उदय न होगा। पूरी एकता तो स्वराज्य मिल जाने पर ही हो सकती है। हिस्से का निश्चय करने के लिए एक से अधिक बार कोशिशें की गईं, यहाँ तक कि आज भी सर तेज बहादुर सप्रू सर्वदल सम्मेलन करने में लगे हुए हैं, मगर उन कोशिशों का फल क्या निकला? समझौता न हुआ, न हुआ। कोई रोजगार शुरू किया जाता है तो पहले से ही यह निश्चय नहीं कर लिया जाता है कि हम इतने रुपए फी सैकड़े नफा लेंगे। पहले तो उसके लिए पूंजी जमा की जाती है, फिर संगठन शुरू होता है, तब माल की तैयारी होती है, इसके बाद खपत का सवाल होता है, आखिर में नफे का प्रश्न आता है। यहाँ पहले से ही नफे के हिस्से तय करने की सलाह दी जाती है। अरे भाई जान, पहले पूंजी तो लगाओ, अभी नफे का क्या सवाल है? हिंदुस्तान अगर इतने दिनों की गुलामी से कुछ सीख सका है तो वह यह है कि समाज के किसी अंग को असंतुष्ट रखकर राष्ट्र दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता। हमें विश्वास है कि भारत इस सबक को अब कभी नहीं भूलेगा। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुसलमान जितना चाहे ले ले, इसमें हिस्से का सवाल नहीं। पृष्ठ संख्या 16। स्वराज्य के अधीन राजपद धन कमाने का साधन नहीं, प्रजा की सेवा का साधन होगा। हम तो यही समझे बैठे हैं। अगर उस दशा में भी हमारे मुसलमान भाई राजपदों या मेंबरियों में बड़ा हिस्सा लेने का आग्रह करेंगे तो स्वराज्य सरकार उनके मार्ग में बाधक न बनेगी। उस वक्त राजपद वही स्वीकार करेंगे जो देश के लिए त्याग करना चाहेंगे। धन लोलुप और विलासी जनों के लिए स्वराज्य शासन में कोई स्थान न होगा। मशीन गन और शांति। शांति स्थापित करने के दो साधन हैं, एक तो मानवीय और दूसरा दानवीय। एक मशीन गन है, दूसरा देश की वास्तविक दशा को समझना और उसके अनुकूल व्यवहार करना। सरकार ने अपने स्वभावानुसार मशीन गन से काम लेना ही उचित समझा है। इसका परिणाम क्या होगा, सरकार को इसकी चिंता नहीं। पुलिस और सेना उसके पास है। देश में जितने स्वाधीनता के उपासक हैं, वह सब बड़ी आसानी से तोप का शिकार बनाए जा सकते हैं। भारत गरीब है, यहाँ ऐसे आदमियों की कभी कमी न रहेगी जो पेट के लिए अपने भाइयों का गला काटने को तैयार रहे। कांग्रेस के लोग जेल में पहुंच ही गए और दलों के इन्हें गिने आदमी हैं, उनको फांस लेना और भी आसान है। रहे हमारे लिबरल भाई, उनकी परवाह ही किसे है, सरकार उनकी सहायता के बगैर भी राज कर सकती है। टैक्सों को दुना कर देने का उसे अख्तियार है, इस तरह वह इससे बड़ी फौज भी रख सकती है। मशीन गनों के सामने चू करने का किसे हौसला हो सकता है। अंग्रेज अधिकारियों के वेतन बड़ी आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ थोड़े से ओहदे हिंदुस्तानियों को देकर बड़ी आसानी से काम लिया जा सकता है। समाचार पत्रों को एकदम बंद कर देने से फिर कहीं से विरोध की आवाज भी न आवेगी। सरकार अपने दिल में संतोष कर सकती है कि अब किसी को कोई शिकायत नहीं रही। रिफॉर्म की गोलमेज कॉन्फ्रेंस की और डोमिनियन स्टेटस की चर्चा ही व्यर्थ है। यह इसी दानवी नीति का फल है कि आज भारत में अंग्रेजों का कोई दोस्त नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थवश सरकार की खुशामत करते हैं, वे भी उसके भक्त नहीं हैं। ऐसा प्रजा पर राज करना अगर अंग्रेजों के लिए गौरव की बात है तो हम नहीं समझते कि वह अपनी सभ्यता और उच्चता का किस मुंह से दावा कर सकती है। अगर अंग्रेजों की जगह इस वक्त हबसी होते तो वे भी दमन ही तो करते। दमन शासन का सबसे निकृष्ट रूप है और अंग्रेजों ने उसी का आश्रय लिया है। क्या उनका ख्याल है कि जिस शक्ति से दबकर उन्होंने सुधार किए और कॉन्फ्रेंस के वादे किए, वह शक्ति अब गायब हो गई है? दमन उस शक्ति को दिन दिन मजबूत कर रहा है। उस राज्य के लिए इससे बढ़कर कलंक की दूसरी बात नहीं हो सकती कि उसे हर एक बात के लिए मशीन गनों ही की शरण लेना पड़े। जिस राज्य में जनता पर महज इसीलिए गोलियां चलाई जाएं कि वह अपने लीडरों की गिरफ्तारी पर शोक मनाने के लिए जमा होती है, उसके चल चलाओ के दिन अब आ गए हैं। पेशावर में जो हत्याकांड हुआ है वह कभी न होता। पृष्ठ संख्या 17। अगर नौकरशाही ने मशीन गनों और फौजी हथियारों से जनता को धमकाया न होता, वह जमाना गया जब जनता पशु बल के प्रदर्शन से डर जाया करती थी। अब वह डरती नहीं, वह उसे अपनी पराधीनता का हेतु समझकर उसकी जड़ खोदने के लिए और दृढ़ संकल्प कर लेती है। नमक कानून टूट गया, सरकार की मशीन गने उसको न बचा सकी। लाखों नमक बनाने वाले आज गर्व से सिर उठाए घूम रहे हैं। ऑर्डिनेंस भी टूट जाएगा। कोई कानून जिसको राष्ट्र के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया है और जिसका केवल पशु बल पर आधार है, अब जनता उसके सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं है। सरकार अगर आंखें बंद रखना चाहती है तो रखे, पर उसकी आंखें बंद कर लेने से देश की स्थिति नहीं बदल सकती। देश अब अपनी किस्मत का मालिक आप बनना चाहता है और उसकी कीमत अदा करने का निश्चय कर चुका है। पेशावर और कराची जैसे कांड उसके पतन को और निकट ला रहे हैं। अप्रैल 1930